प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सबको हृदय से प्रभु खुदावन यीशु मसीह के नाम में खैर मकदन और अभिनंदन करता हूँ। और हम उसके बड़े आभारी हैं कि आज हम फिर एक बार, क्योंकि हम एक बार फिर खुदावन के कलाम को, उसके वचन को सुन सकते हैं, और इस तकनीकी मदद के लिए भी हम खुदावन के बड़े शुक्रगुजार हैं, आभारी हैं, जिससे कि हम उसका वचन कलाम सुन सकते हैं। इससे पहले कि हम दुआ करें, मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस 1:13 से 25 आयत तक। पहला अध्याय 1:13 से 25 आयत। पहला बाब 13 से 25। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने तक तुम्हें मिलने वाली है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं में सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र हो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार उसका फैसला करता है, न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, यानी कि डरते हुए अपने वक्त को गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन तो बाप दादों से चला आ रहा है। उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने और नाशवान चीजों के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू से, अर्थात यीशु मसीह के कीमती लहू से हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में, यानी कि आखिरी वक्त में, तुम्हारे लिए वो जाहिर हुआ, प्रकट हुआ है। और उसके द्वारा तुम खुदावन के, यानी परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और जलाल दिया, महिमा दी, कि तुम्हारा ईमान और विश्वास आशा में खुदावन पर हो, खुदा पर हो। अतः जबकि तुमने भाईचारे को निष्कपट तरीके से सत्य को मानने और मनों को पाक और पवित्र करके रखा है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से मोहब्बत भी रखो, प्रेम भी रखो, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं बल्कि अविनाशी, जो कभी ना मरने वाला बीज है, उससे खुदावन के जीवते और सदा ठहरने वाले कलाम के द्वारा नई जिंदगी को पाया है। क्योंकि हरेक जो जानदार चीज है वो घास के समान है, और उसकी सारी जो दिखावट है वो घास के फूल के जैसी है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, पर खुदावन का कलाम हमेशा हमेशा तक, युगान युग तक कायम रहता है। और यही वो कलाम है, यही वो खुशखबरी है जो तुम्हें बताई गई और सुनाई गई। और अब हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे ईमानदार, वफादार खुदावन परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम तेरे नाम की हमदो तालीम ताजीम करते हैं और प्रशंसा करते हैं और तुझे धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि तूने हमको ढूंढ लिया। हम तो तुझे ढूंढ नहीं सकते थे, हमने तुझे नहीं ढूंढा ना पाया, बल्कि तूने हमें पा लिया और ढूंढ लिया। तूने अब हमको इस रास्ते पर डाला है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र करते हैं कि तू हमारे साथ साथ हमारी राह में हमारे साथ चलता है। हे प्रभु यीशु मसीह, तू हम सबको जानता है और हम में क्या घटी और क्या कमी है। हे प्रभु यीशु, तू सब जानता है और हर कमियों को हम में से दूर कर दे जो के हम में पाई जाती हैं, जिससे कि हम एक दिन तेरे सामने, तेरे सिंहासन तख्त के सामने खड़े हो सकें और सारी महिमा और सारा आदर तेरे को ही मिले और धन्यवाद तुझे ही मिले। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास आज भी अवसर है कि हम तेरे कलाम को, खालिस कलाम को, वचन को सुन सकते हैं और हमारे भाई फ्रैंक को तू सामर्थ्य दे और आशीष दे, उसके होंठों को तो छू और तेरे नाम की सिताइश हो और तेरे को, तुझको ही और तू ही हमारे दिलों को खोल सकता है, हमारे मनों को खोल सकता है, जिससे कि वो सच्चा कलाम और सच्चा वचन और हमारे जीवन के अंदर सच्चाई को ला सकता है। सारा आदर और सम्मान केवल तेरे को मिले, खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और मैं भी आप सबका अभिनंदन मैं भाई फ्रैंक करना चाहता हूँ और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया में और उसके आसपास के जितने देश हैं, मुल्क हैं और सभी लोगों में और सभी जातियों में सारे संसार में अभिनंदन करता हूं आपका। हम खुदावन के बड़े आभारी और शुक्रगुजार हैं क्योंकि हम ये ब्रॉडकास्ट कर पा रहे हैं और ये ट्रांसमिशन हम कर पा रहे हैं वचनों का। और आज बहुतों के लिए ये आशीष का कारण है, इसकी वजह से आशीषें लोगों को मिल रही हैं खुदावन के खालिस कलाम जो भाई केला ने पढ़ा और हम उसमें और गहराई से बाद में जाएंगे। पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा, ये जो समय में जो इस वक्त जो कुछ गुजर रहा है उसके बारे में बताना चाहूंगा और इस जमीन पर क्या क्या चल रहा है। हमने इसके बारे में सुनते हैं और सुन रहे हैं कि कुछ पिछले हफ्तों में क्या क्या हो गया और ये भी जानते हैं कि यूरोप में क्या हुआ और खास तौर पे जर्मनी में क्या हुआ, जहां पर 170 से भी लोग जो है वो मर गए, गुजर गए और ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो हमारे वक्त में देखिए ये हो रहा है और अब हम एक बार खुदा के कलाम से फिर पढ़ेंगे और लूका की इंजील से हम पढ़ेंगे। भाई बोग जो है इसको पढ़ेंगे, लूका 21 बाब और 25 से लेकर 28, लूका 21 25 से 28। और सूरज और चांद और तारों में निशान दिखाई देंगे और जमीन पर देश देश के लोगों को मुश्किलें पेश आएंगी, संकट होगा, क्योंकि वे समुन्दर के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण यानी डर के कारण संसार पे आने वाली आफतों को देख देख कर लोगों के जी में जीना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, आकाश की कुवतें हिलाई जाएंगी, तब वे खुदावन को यानी के अपने आदम को, मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। और बड़ी सामर्थ के साथ और महिमा के साथ आते हुए, जलाल के साथ आते हुए देखेंगे। और जब ये बातें होने लगें, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा यानी तुम्हारे नजात अब बिल्कुल नजदीक है। हमारे खुदावन का बड़ा शुक्र हो इस कलाम के लिए जिसने कि यह वादा किया, और जो पहले से जानता था और कह सकता था कि क्या क्या होने वाला होगा और अंत में क्या होगा, आखिरी वक्तों में क्या होगा, और हम जब ये खबरें रोज सुनते हैं, हम जानते हैं अब सब कुछ बड़ा बदल चुका है। हम खुदावन का बड़ा शुक्र करते हैं, प्रभु का शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हम इस समय को देख पाते हैं, इस समय को पहचान पाते हैं, इस वक्त को पहचान लेते हैं। जैसा खुदावन ने खुद कहा, और उसने कहा, उसने बड़े साफ साफ तरीके से कहा, जब तुम इन चीजों को होता हुआ देखो और इनकी शुरुआत होते हुए देखो और जब होता हुआ देखो, तो अपने सरों को ऊपर उठाना, क्योंकि अब तुम्हारी नजात और तुम्हारा छुटकारा बिल्कुल नजदीक है। हम ये सब बातें पढ़ रहे थे कि क्योंकि इस धरती पर, इस जमीन पर बहुत मुश्किल का वक्त आ रहा है, और हम, और ये जो वक्त आ रहा है इसमें तो लोग शायद जीना भी नहीं चाहते, पर ये तो मुसीबतें तो फिर भी आएंगी। हमको इस चीज के बारे में कलाम में, वचन में बताया गया है कि देखिए समय भी गुजर जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ऐसा जरूर होगा। हमने देखा कि लहरें कितनी ऊंची ऊंची आ रही हैं, और लोग इसके बारे में अगर देखें कि जर्मनी में क्या हो रहा है, एक शहर है, इस लहरों की वजह से, इस बाढ़ की वजह से कि घर जो थे वो टूट गए, चकनाचूर हो गए, और पेड़ उखड़ कर गिर गए, और पुल भी टूट गए, और इस तरीके से ये सब हुआ जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ भाई और बहनों, और भी जबरदस्त मुसीबत और संकट सारी दुनिया में आने वाली, और हमारे लिए जैसे कि जो कि हम बाइबल में, वचन में, कलाम में बिलीव करते हैं, ईमान रखते हैं, ये बहुत जरूरी वक्त है कि हम अपने सरों को इस वक्त ऊपर उठाएं। और हमें पता है कि ये सब जो चल रहा है ये इस बात को बता रहा है कि हमारा छुटकारा, हमारी नजात बहुत नजदीक है, और हम और कुछ बातों के बारे में भी मैं बता रहा हूं। हम देख रहे हैं कि क्या क्या, क्योंकि धर्म में यानी के धर्म की कामों में क्या हो रहा है, रिलीजन्स में क्या हो रहा है, इज़राइल में क्या हो रहा है। अब देखिए वहां पर जो शांति की संधि की बात चल रही है, और जमीन पर क्या हो रहा है, और हमें पता है हम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, जो रोज की जो खबरें आती हैं हमें उससे पता लग रहा है। और देखिए कि जो खुदा का कलाम है इसका पूरा होना बहुत जरूरी है, और जैसा कि मैंने बताया पिछली बारी भी कि बाइबल जो है ये तो इस करीब 700 भाषाओं में बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ, तर्जुमा हुआ, और करीब 350 से ऊपर भी क्रिश्चियन यानी मसीही चर्च या डिनोमिनेशन या संप्रदाय बोले जाते हैं, पर खुदा तो एक है, और अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी एक ही है, छुटकारा एक ही है, नजात एक ही है, कलीसिया एक ही है। और हम इस बात पर जोर देते हैं कि वास्तव में अब्राहम जो था, और अब्राहम के साथ जो है ये छुटकारे की जो योजना है, ये जो उत्पत्ति 12 से शुरू हुई और अब्राहम से शुरू हुई, और हम जानते हैं कि जो पहली बातचीत खुदावन की अब्राहम के साथ हुई, उसमें खुदावन ने उसने उसको एक वचन दिया, एक वाचा दी, एक प्रॉमिस दिया और उस पर जोर दिया कि जो तुझे आशीष देगा उसको भी आशीष मिलेगी और जो तुझे श्राप देगा उसको श्राप मिलेगा। अब देखिए इन बातों का निचोड़ क्या है कि तुझ में यानी अब्राहम में सारी की सारी वंश जो हैं, सारी की सारी कायनात तेरे अंदर जो है वो आशीष पाएगी, ब्लेसिंग पाएगी। और जो छुटकारे की योजना और जो सल्वेशन का जो प्लान था वो और सारी भाषाओं और सारे लोगों के बीच में आया। और हम जानते हैं वो कहता है कि आखिरी वक्त में उसने कहा कि यह सुषमाचार जो है, ये जो छुटकारे का जो सुषमाचार है यीशु मसीह का, ये तो सारी दुनिया के कोने कोने में छोर छोर में गवाही के तौर पर प्रचार किया जाएगा और उसके बाद आखिरियत यानी अंत आ जाएगा, खात्मा हो जाएगा। हम खुदावन के बड़े आभारी हैं क्योंकि इस बात के लिए कि जो उसने हमें इतना पाक कलाम दिया। और हम बड़े सीरियसली इस बात को कहें क्योंकि बहुत बड़े बड़े धर्म आज पाए जाते हैं, और बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है और बहुत सारे लोग हैं, और जो जो अपने आप को ये बताना चाहेगा कि जो पीछे गुजर गया, जो धर्मों के में पीछे गुजरा, वो उसको देखने की जरूरत है क्यों? उसको तो सिर्फ कुछ बटन टाइप करके वो सारी की सारा इतिहास, हिस्ट्री हर एक धर्म के बारे में पढ़ सकता है, जान सकता है कि नाइसिया काउंसिल में क्या हुआ और कितने लोग जो थे वो त्रिएकता यानी ट्रिनिटी के लिए चले गए और कुछ अलग हो गए, और हम पढ़ सकते हैं इतिहास में। और हमें 245 जो अलग अलग शिक्षाएं हैं, रीढ़ियां हैं, उनके बारे में पता चलता है, और हम कुछ बटन कंप्यूटर पर दबाते हैं तो हम इसके बारे में सारी खबर हमको मिल जाती है और सारी चीजों के बारे में हमें आज पता चल जाता है। और जो हम जो सेंट्रल यूरोप में यहां पर रहते हैं, अगर हम ये जानना चाहें कि स्विंगली कौन था जो कि सुधारक था और ज्यूरिक के अंदर बहुत बड़ा सुधारक था, जिसको खुदावन ने ये फजल दिया कि वो दूसरों की तरह नहीं था, वो बड़ा फर्क था। और जो ये जानना चाहे कि उसकी परिस्थितियां किस प्रकार की थी, वो कुछ बटन हम कंप्यूटर में दबाएंगे तो हमें पता लगेगा कि वो शादीशुदा था, उसके दो बच्चे थे और उसकी दो लड़कियां थीं, और जो चाहेंगे जानना चाहेंगे मार्टिन लूथर ने क्या किया, इसके लिए भी और कुछ बटन आप दबाएंगे तो उसकी भी, उसका इतिहास, उसकी कहानी भी आपको पता चल जाएगी। उसने एक नन से शादी करी और उसके तीन लड़के थे और उसकी तीन लड़कियां थीं। हम पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं सबके बारे में, हम इन सब चीजों के बारे में। इसके लिए हमें किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज सब कुछ सबके घर में अवेलेबल है, पर्याप्त है जानने के लिए, पढ़ने के लिए। जो ये जानना चाहे कि अल्लाह की तीन लड़कियों, तीन बेटियों के नाम क्या थे, वो कुछ बटन कंप्यूटर में डालेगा, पता लगेगा। नट और ऊजा और मनेट, ये थी। ये सब कुछ हम सारी बातें आज, सारी की सारी बातें हम इस तरीके से इस मशीन के द्वारा पढ़ सकते हैं। पर हम प्यारे भाई और बहनों और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हम दूसरे धर्मों के लिए के बारे में बात नहीं कर रहे, उनके बारे में कुछ खास नहीं कह रहे, पर हमें तो ये पता है कि उनके संस्थापकों ने क्या क्या किया, उनकी नींव डालने वालों ने क्या क्या किया। हम तो इस बारे में फिक्रमंद हैं कि जो इस सारे संसार का मालिक और सृष्टिकर्ता और बनाने वाला और चलाने वाला सच्चा खुदावंद है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और सारे संसार में, दुनिया में क्या चल रहा है, इस सारे संसार का बनाने वाला और चलाने वाला मालिक और खालिक हम उसके बारे में जानना चाहते हैं और जानते हैं। और जिसने सारी की सारी पेड़ पौधे और फल, ये सारी चीजें जो खुदावंद ने बनाई, ये कितना महान है। वो तो सारी जगह हम सृष्टि में और प्रकृति में, नेचर में उसको देख सकते हैं, पर ये जो बनाने वाला, सृजन वाला है, ये हमारा बचाने वाला, हमारा छोड़ाने वाला भी है, हमारा न्याय करने वाला भी है। और इसलिए जो खालिस कलाम जो है वो इब्रानियों भाषा में पहले बाइबल में बताया गया, और उसका नाम था, उसको कहा गया इलोहिम, और इलोहिम जो है, और इलोहिम 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 के अंदर एक और अनेक दोनों बातें पाई जाती हैं। और एक का मतलब है कि एक खुदा, एक शख्सियत, और अनेक में यह है कि उसकी बहुत सारी गुण, उसके उसकी प्रकृति, उसकी एट्रीब्यूट्स, उसके सारे के सारे उसकी गुण जो हैं वो अनेकता में पाए जाते हैं। जो खुदावंद है वो ही सब कुछ है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, और वो अनंत काल से अनंत काल का खुदावंद और परमेश्वर है। और उसने अपनी योजना को, अपने प्लान को, अपनी तरतीब को अब्राहम के ऊपर जाहिर किया, प्रकट किया। और देखिए यहां पर एक भेद की बात है जो अब्राहम के बारे में, उसके अब्राहम के बारे में बताया गया, वो पुराने और नए अहदनामे में लिखा गया है अब्राहम ने खुदावंद पर भरोसा किया, विश्वास किया, ईमान किया, इसकी वजह से वो धार्मिक व्यक्ति ठहरा, रास्तबाज ठहरा। अब्राहम ने खुदावंद के हर एक वादे पर यकीन किया, विश्वास किया जो खुदावंद खुदा ने कहा और उसे दिया। ये है वो चिन्ह, ये है वो निशान, एक सच्चे विश्वासी का ये निशान है, ये चिन्ह है, क्यों, जो खुदा, जिसका खुदावन से संबंध है और कनेक्शन रहता है, जिससे कि खुदावन जो है व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से बात करता है और अपने प्रोग्राम को उसके ऊपर आत्मा के द्वारा प्रकट करता है। मेरा सवाल ये है आप सब से, मेरा सवाल ये है कि हम किस पर भरोसा रखते हैं, क्या हम किस चीज पर भरोसा रखते हैं। मैंने बताया कि करीब 350 से भी ऊपर मसीही संप्रदाय और मसीही डिनोमिनेशन पाए जाते हैं, और सारे के सारे ये जो सारी की सारी सारी बातें जो हैं, जो वो कहते हैं खुदा के बारे में, वो उसको बिलीव करते हैं, और उनमें से एक भी उस पर ईमान नहीं रखता जो खुदावन ने कहा, जो खुदावन ने असलियत में कहा, ओरिजिनल में कहा, उसको जो खुदावन ने कहा वो उस पर यकीन नहीं करते, और इससे बड़ा दुख होता है। ये इसमें कितना गहराई से दुख होता है, पेन होता है, दर्द होता है, आदमी सोच नहीं सकता। ये इसकी वजह से मुझे भी कितना दुख होता, और आप सब जानते हैं कि खुदावन ने मुझे बुलाया, और खास तौर पे इसलिए बुलाया कि मैं उसके पाक कलाम को, पवित्र वचन का प्रचार कर सकूं। और खुदा ने खुद, उसने ये वादा दिया कि इससे पहले कि खुदावन यीशु दोबारा आए, हर चीज जो कि अपनी असली हालत में थी, ओरिजिनल हालत में थी, 2000 साल पहले कलीसिया में जो पाई जाती थी, वो क्या पढ़ाया जाता था, क्या बताया जाता था, क्या विश्वास किया जाता था, क्या ईमान, जिसमें ईमान किया जाता था, और ये सारी चीजें जो बताई गई थी ये वापस बहाल की जाएंगी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। और तब उसके बाद अंत आएगा। और ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम में, एमाल की किताब में, और क्योंकि उसको खुदावन का आसमान में, स्वर्ग में रहना तब तक जरूरी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बड़ी नम्रता से इस बात को कह रहा हूं और पूछ रहा हूं, क्या आप एक ऐसी कलीसिया को जानते हैं, एक ऐसे डिनोमिनेशन को जानते हैं जो अपने आप को सुधारना चाहता है, अपने आप को ठीक करना चाहता है और सही करना चाहता है, और उस बात पर ईमान रखना चाहता है जैसा कि कलाम कहता है या वचन कहता है? सब ये कहेंगे एक परमेश्वर, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही भक्त, सब कहेंगे। और ये भी कहेंगे कि हम बदलाव में हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, नए जन्म में विश्वास करते हैं, सब कहेंगे। पर अगर उनसे पूछें जो कि क्या कि वो उसमें हाथ पानी में डाल करके, जिसको पवित्र पानी बोलते हैं, तीन बारी उसमें हाथ डाल करके माथे के ऊपर, एक छोटे बच्चे के माथे के ऊपर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम, बाप बेटे और रूल कुदस के नाम में तीन बारी उस पानी को उसके माथे के ऊपर छुआ देते हैं, और वो कहते हैं उसके बाद कि ये अब तुम्हारा नया जन्म हो गया, अब तुम आत्मा और पानी से तुम्हारा जन्म हो चुका है, जैसा कि यूहन्ना में लिखा है, वो कहते हैं वैसा वाला हो गया। इसके बारे में सोचें, गौर करें, इसके बारे में गहराई से सोचें, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। आगे चलिए, और अब जानते हैं हम क्या हुआ, जब से सुधार का काम हुआ और एनाबैप्टिस्ट जो थे उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया, क्योंकि उनको श्राप दिया गया, क्योंकि उन्होंने खुदावन के वचन को मानने की कोशिश करी और उन्होंने कहा बपतिस्मा जो है वो तो दफनाया जाना है पानी की कबर में, डुबकी के द्वारा, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पानी में डुबो कर बपतिस्मा दिया। और रोमियो छे में बताया गया कि हम खुदावन यीशु मसीह की मौत का हमने जो बपतिस्मा लिया गाड़े जाने के द्वारा पानी की कबर में, यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा लिया, और जिसके साथ हम दफनाए गए। मुझे इस बात का बहुत दुख है, हम जानते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसा हमने मत्ती में देखा, मत्ती 24 में देखा, मरकुस 13 में देखा और लूक 21 में देखा, ये समय के आखिरी वक्त के निशानों के बारे में हमने देखा, जैसा कि हमारे खुदावन ने कहा, प्रभु ने कहा, क्योंकि ये मुसीबतें, कठिनाइयां और बीमारियां, ये सारी चीजें, ये पैंडेमिक, ये अजीब अजीब टाइप की बीमारियां आएंगी और ये बढ़ती जाएंगी और ये बढ़ती ही जाएंगी, जब तक कि लोग ये ना कहें कि अब तो मर जाना ही अच्छा है, अब तो जीने का कोई फायदा नहीं है जीने का, पर फिर भी ये बातें बढ़ती जाएंगी। कब तक हम इस चीज का इंतजार करना चाहते हैं, कब तक इंतजार करना चाहते हैं हम? मैं आपको बता रहा हूं कि समय जो है, अंत जो है, वे बिल्कुल सामने खड़ा है, द्वार पे खड़ा है, दरवाजे पे खड़ा है, जैसे पतरस ने कहा। हम जानते हैं कि जैसे कि डैनियल ने क्या लिखना चाहा, क्या लिखा। उसने कहा, इन बातों को, इस किताब को मोहर बंद कर दे तब तक के लिए, जब तक कि आखिरी वक्त तक के लिए। और फिर इसके बाद में ज्ञान बढ़ता गया, ज्ञान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पर हम ये भी कहना चाहते हैं, बड़े प्रेम में होकर, पर सच्चाई में कहना चाहते हैं कि सारे लोग जो हैं वचन के अंदर कलाम में ये ढूंढ रहे हैं और पढ़ाई किए जा रहे हैं, सच ढूंढे जा रहे हैं, पर फिर भी वो अपनी शिक्षाओं में, अपने अपने डॉक्ट्रिन्स में बैठे हुए हैं, इधर खोज भी रहे हैं और बैठे हुए हैं अपनी शिक्षाओं में, और उसके बारे में गहराई से सोचते नहीं कि जो सच्चा ईमान है, जो जो खुदावंद के अंदर सच्चे खुदावंद है, वो सिर्फ तब आएगा उनके अंदर जब के जिसके जिनके लिए खुदावंद ने व्यक्तिगत रूप से शख्सी तौर पर जिनसे बात करी है और अपने वादों को दिया और उन्होंने उस पर बिलीव किया, विश्वास किया, जैसा उसने अब्राहम के साथ किया। यही वो तरीका है सबके लिए। हम कब तक ये कहते रहेंगे कि पहले पहली आमद पर 109 भविष्यवाणियां जो थी, नबूवतें पुराने नियम की पूरी हुई। और कौन कह सकता था, कौन फरीसी कह सकता था, सदूसी, कौन सदूसी कह सकता था, कौन कह सकता था, ये जिसने, कौन था जिसने ये देखा। उन सब ने इस चीज को नकारा, इसको धिक्कार दिया, इसको नहीं माना। अब देखिए उन्होंने खुदा उनको क्या कहा, मैं आपसे कह रहा हूं, उन्होंने उनमें से किसने इस बात को माना, किसने इस बात को पहचाना कि कौन से वक्त में वो थे और कौन उस वक्त था, और बाइबल की नबूवतें और भविष्यवाणियां पूरी हो रही थी, और वो सारी बातें जो बताई गई थी, और हमारे प्रभु के बारे में जो बताई गई थी, वो सारी चीजें नबूवत करी गई थी, भविष्यवक्ताओं ने बताई थी, सारी चीजें बताई गई थी, और जो महायाजक जो थे, बड़े बड़े शिक्षाधारी जो थे, वो इनके बारे में पढ़ते रहते थे, पर उनको इस चीज का मुकाशफा नहीं था। उनको ज्ञान तो था, नॉलेज तो थी, पढ़ते तो थे, पर उनको मुकाशफा नहीं था, और वो उनको समझ में नहीं आई थी कि ये क्या है। तब खुदावन ने वो जैतून के पहाड़ पर चढ़ गया और वो यरूशलेम की ओर देखकर वो बोला, और वो देखा कि जो यतून का पहाड़ है, वहां गार्डन ऑफ गच्छमनी के द्वारा अगर आप देखें तो आपको टेंपल माउंट और जेरूशलम वहां से दिखाई देता है, और हमारा प्रभु वहां रोया यरूशलेम को देखकर, ओ यरूशलेम, ओ यरूशलेम, अगर तुझे इस समय को पहचान लिया होता, जो आज जो तेरी शांति के लिए सलामती की बातें थी, पर अभी वो तेरे से छुपा हुआ है, हे यरूशलेम, तू तो अंधकार में है। 4000 साल पहले वो इस इंतजार में थे कि ये कुछ होने वाला है, पर उन्होंने उस चीज को देख नहीं पाए, वो अंधेरे में रहे और उस चीज, उस वक्त को पहचान नहीं पाए और उसका मजाक उड़ाया। और मेरे भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे वक्त में आ गुजरे हैं जिसमें के हमको इस बात की तुलना बड़े सच्चाई से करने की जरूरत है। अब मैं बार बार कह रहा हूं, ये खुदावन के नाम में कह रहा हूं, जो इस बात पर भरोसा रखते और ईमान रखते हैं कि क्या कहा गया था, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई से कहा गया था, जो इस बात को जानते हैं, विश्वास करते हैं, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया था उस वक्त, और वो तैयार थे, वो लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह को रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए, तैयार थे, और यूहन्ना कहता था मैं तो तुझे पानी तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, और जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, पाक रूह से बपतिस्मा देगा। और जैसे कि हमारे खुदावन के आने के बारे में अनाउंस किया गया, बताया गया, उसी तरीके से उस राह तैयार करने वाले के बारे में यशाया 40 और उसकी तीसरी आयत और मलाकाई 3:1 में बताया गया। और जब वो वक्त मुकर्रर पूरा हो गया तो सब कुछ उसी प्रकार से पूरा हुआ जिस प्रकार से बताया गया था, और बड़े अलौकिक तरीके से, जिसके बीच में हम गहराई में अभी इस वक्त नहीं जाना चाहते, ये सब हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस सीन पर आया, और वो इसलिए इस प्रकार से आया जैसे कि खुदावन की तरफ से भेजा हुआ बंदा, और उसके पास एक संदेश था, लोगों के लिए एक संदेश था। हमारे वक्त में क्या हुआ मैं ये कहना चाहूंगा, और इसके बारे में लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, शायद इसको झूठ समझते हैं, पर खुदावन जो है वो रोता है, उन सब के लिए खुदावन रोता है जो इस बात को नहीं पहचानते, अपने आज के वक्त को जिससे हम गुजर रहे हैं, जिस पर जो इस वक्त क्या कलाम है, क्या वचन है, जो इसको नहीं मानते, खुदावन उनके लिए रोता है। मैं फिर से कह सकता हूं 88 साल बीत चुके हैं जबकि भाई ब्रैनम जो खुदावन का बंदा था, सेवक था, उस वक्त उनको ये आज्ञा मिली। 11 जून 1933 को भाई ब्रैनम को ये आज्ञा मिली, बुलाहट आई कि वो इस संदेश को लेकर आए। इस संदेश के द्वारा खुदावन यीशु मसीह की दूसरी आमद की, दूसरे आगमन की तैयारी होगी, और सारे के सारे प्रचारकों से आप पूछें, आप सारे करिश्मेटिक लोगों से पूछें, सारे पेंटिकॉस्टल से पूछें, सारे बैप्टिस्ट से पूछें, सारे मेथोडिस्ट से पूछें, आस उनसे पूछें कि किसने इस चीज पर भरोसा किया, विश्वास किया, और कौन चाहता है कि वो इस सच्चाई को जानना चाहते हैं, कौन है वो? वो तो सिर्फ अपने प्रोग्राम और अपनी शिक्षाओं में बने हुए। क्या इनमें से कोई एक भी कलीसिया ने अपने पुराने डॉक्ट्रिन को छोड़ा? और जो लूथरन है वो आज भी पढ़ाते हैं, वो वही बात पढ़ाते हैं, मेथोडिस्ट भी वही बात पढ़ाते हैं जो उस टाइम बताया गया, उस वक्त की बातें करते हैं, बैप्टिस्ट भी यही बोलते हैं जो उस टाइम बताया गया, वो अपनी शिक्षाओं में चले जा रहे हैं। पर कौन इस बात की ओर ध्यान लगा रहा है कि आज कलाम क्या कह रहा है? और एक एलिया जैसा नबी आएगा, और मलाकाई 4 में और इस बात में यहां पर यह बताया गया है कि नए नियम में बताया, मत्ती 17 में बताया गया है कि एलिया तो आएगा और सारी चीजों को बहाल करेगा, सारी चीजों की वापसी वैसे करेगा जैसे वो पहले थी। और बड़े जो बड़े बड़े बिलियनर और बड़े धनी धनी जो इवेंजलिस्ट हैं, जो पैसे के बारे में बोलते हैं, समृद्धि के बारे में बोलते हैं, पर हमारी जो सेविकाई है, और वो बोलते हैं कि ये हमारी सेविकाई है, और लोगों को रास्ते से वर्गला रहे हैं, पदभ्रष्ट कर रहे हैं, उनको गलत रास्ते पर अपनी शिक्षाओं से डाल रहे हैं, और हम देखते हैं कि उनमें फर्क क्या है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या फर्क है? खुदावंद खुदा ने कहा, उसने इसका खुद जिम्मा लिया, और उसने खुद इसकी जिम्मेदारी ली कि इन आखिरी के दिनों में, इस आखिरी के समय में, जो अनुग्रह का आखिरी, फजल का आखिरी समय, ये आखिरी संदेश जो है, ये सब प्रचार किया जा चुका है, और जो के प्रेरितों रसूलों के वक्त में जो बातें बताई गई, वो एक ईमान और एक प्रभु, एक खुदावन, एक बपतिस्मा, और देखिए जाकर ढूंढिए कि कहां पर लोग जो हैं इस तरीके से क्योंकि लोग तीन उंगलियां उठाकर और बोलते हैं पिता पुत्र, इस प्रकार का निशान बनाते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करते हैं, और वो अपने आप को ही ब्लेस करते हैं, और कौन क्या कह सकता है इसके बारे में। मेरे दोस्तों, ये अनुग्रह का फजल का वक्त जो है ये खत्म होने वाला, ये देखिए ये आखिरी मैसेज है, ये आखिरी कॉल है, ये आखिरी बुलावा है, आखिरी बुलाहट है, मेरे लोगों उनमें से निकल आओ और अपने आप को पवित्र करो, और जो नापाक चीज है उसको मत छुओ, यानी कि नापाक शिक्षा को मत छुओ। और मत्ती 28 में खुदावन ने कहा, और ये मत्ती 28 जो है उसकी आयतें जो है इस तरीके से, गलत तरीके से उनको समझा जा रहा है, बोला जा रहा है और प्रचार किया जा रहा है आज भी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ जिनके पास आंखें हैं, आंखें तो हैं पर देख नहीं सकते, कान तो हैं पर सुन नहीं सकते, पर जो थामे रहते हैं, जो विश्वास ने वही बातें हैं जिनको वो थामे हुए हैं और पकड़े हुए हैं। पर पवित्र वचन में, पाक कलाम में हमें साफ साफ बताया गया, हम जो भी वचन में और काम में करें, हम वो सारे के सारे काम खुदावन यीशु मसीह के नाम में करें, किसी और नाम में नहीं। और यही वो नाम है जिसके अंदर खुदावन ने अपने आप को हम पर जाहिर किया और प्रकट किया, यही वो नाम है खुदावन यीशु मसीह। और वो आसमान में, स्वर्ग में पिता और इकलौते पुत्र के रूप में प्रभु, हमारा प्रभु धरती पर, और पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया के अंदर, यानी हमारे अंदर। और पिता एक नाम नहीं है, हमें तो बोला गया इस नाम में बपतिस्मा दो और नाम के अंदर बपतिस्मा दो, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। तब हमारे प्रभु ने कहा, मैंने तेरे नाम को उन पर प्रकट कर दिया, उनके ऊपर जिनको तूने जिन संसार की सृष्टि से पहले जान लिया। और क्या वो नाम है, वो नाम क्या है, हम सारे के सारे वचनों को पढ़ें, आयतों को पढ़ें, तब हमें पता लगता है किसी भी नबी ने, किसी भी रसूल ने, किसी भी प्रेरित ने, किसी प्रभु के सेवक ने, कभी भी उसने तीन व्यक्तित्व, तीन शख्सियत के फॉर्मूले के बारे में बयान नहीं किया। पर ये वो दिन है जो कि प्रभु ने बनाया, खुदावन ने बनाया, और हम सब जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि पतरस ने कैसे बपतिस्मा दिया, फिलिपोस ने कैसे बपतिस्मा दिया, पौलुस ने कैसे बपतिस्मा दिए। हम जानते हैं कि सब ने कैसे बपतिस्मा दिया, और सब अपने आप को इस बात से समझ सकते हैं कि हम खुदावन की तरफ वापस आ जाएं, वापसी कर लें, बहाली कर लें। और तब, और मैं भाई फ्रैंक विश्वास करता हूं कि क्योंकि तू भाई, तू बहन, क्योंकि तू ये कह सकता है, ये कह सकती है अब्राहम की तरह कि मैं खुदावन खुदा में ही भरोसा करता हूं, ईमान रखता हूं, रखती हूं, मैं सिर्फ उस चीज पर भरोसा ईमान रखता हूं जो कि खुदा के कलाम में लिखा है। और ये नहीं कि सिर्फ एक बात ऐसी है जो कि हम होठों से इकरार कर रहे हैं, नहीं, ये एक वो शख्स असलियत है, ये वो असलियत है जो कि हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, ये हमारा ईमान। खुदावन ने भाई ब्रहनम को इस सेविकाई, इस मिनिस्ट्री के लिए, खिदमत के लिए भेजा कि वो जो खालिस जो कलाम है, जो कि रसूलों के वक्त और नबियों के द्वारा सुना गया और लिखा गया, नए अदनामे में जो लिखा गया, ये खुदावन ने ये बातें जाहिर करी और नाजिल करी, और जिससे कि ये बातें जो हम इनका प्रचार कर सकें, और जो खुदावन के बंदे हैं और वो ही खुदावन के पाक कलाम को सुनते हैं, पवित्र वचन को सुनते हैं। भाई और बहनों, कुछ मिनटों में मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो शुरू में कलाम पढ़ा गया उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, वो इतना महान है और वो इतना बहुमूल्य है, इतना कीमती है। हम दो बातें पढ़ेंगे यहाँ पर, हम फिर यहाँ कुछ बातें पढ़ेंगे, फिर पहला पत्र से पढ़ेंगे, भाई पढ़ेंगे। मत्ती 25 और 10, मत्ती 25 और 10, और जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो, प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो। ये वो बात है जिसकी हमें तैयारी और इंतजार की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये कहते हैं, क्योंकि जो अलग किए हुए लोग हैं, अलहदा किए हुए लोग हैं, वो हैं, वही वो कलीसिया है जिनको बुलाया गया। ये वो अकलमंद कुंवारियां हैं। एक कुंवारी जो है वो आत्मिक तौर पर व्यभिचार नहीं करती, पर यहां ये बताया गया है कि वो खुदावन के लिए पवित्र की गई है, पाक की गई है, और वो उन कामों को नहीं करती जो संसार के और व्यभिचार के काम हैं। और जो सच्ची दुल्हन है वो तो दुल्हे के लिए अपने आप को तैयार किए रहती है और इंतजार करती रहती है जब तक के दूल्हा आकर के उसको ले ना जाए। आज से क्योंकि किसी भी विश्वासी को और भाई को और बहन को, दोस्तों, किसी को भी खुदावंद ये इजाजत नहीं देता कि हम कुछ और विश्वास कर लें, कुछ और मान लें, कुछ और पर बिलीव कर लें, जैसे अब्राहम की, हमारा विश्वास अब्राहम की तरह हो जिसने कहा मैं सिर्फ खुदा पर भरोसा करता हूं, मैं किसी और शिक्षा पर भरोसा नहीं करता। इब्रानियों चार और उसकी पहली आयत हम पढ़ते हैं। इब्रानियों चार और उसकी पहली आयत। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। मैं ये बता रहा हूं भाइयों बहनों, ये वो कलाम है, ये वो वचन है जिससे जो कि हम सबको छू जाना चाहिए, हमें इसका एहसास हो जाना चाहिए कि रैप्चर जब होगा तो क्या होगा, और उनका क्या होगा जो उस रैप्चर से महरूम रह जाएंगे, जो नहीं जा पाएंगे, और वो दरवाजे पर खटखटाएंगे। कौन इस एक्सपीरियंस से गुजरना चाहता, कौन? जैसा कि कहा गया है, जैसा कि खुदावन ने हमें फजल दिया और अनुग्रह दिया कि हम उस सेविकाई को, उस खिदमत को जो हमारे वक्त में दी गई, हम उसे स्वीकार कर सकें, उस पर चल सकें, उस पर ईमान रख सकें, उसे मान सकें जो भाई ब्रैनम के सेविकाई के द्वारा हमको मिली। जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रतिज्ञा, ये वाचा, ये वचन जो है, ये जो, और ये भी हम जान लें कि उससे मिली हुई कौन सी सेविकाई आज है, हम जान सकते हैं कि हम वो लोग हैं जो कि अकलमंद कुंवारियों में पाए जाते हैं, क्योंकि हम उस सेविकाई को जान पा रहे हैं जो भाई ब्रनम की सेविकाई के बाद आज भी चल रही है। हमें दूसरी शिक्षाओं की आवश्यकता नहीं है। बहुतेरे ऐसे हैं जो नबी और भविष्यवक्ता की बातें तो करते हैं, उसकी बातों के बारे में बातें तो करते हैं, पर कलाम को लेकर नहीं चलते, उसको कलाम के साथ मिलाकर नहीं चलते। और हम अब्राहम के साथ मिलकर यह कह सकते हैं कि अब्राहम ने खुदा पर भरोसा किया और तभी वो रासबास ठहरा, तभी वो धार्मिक ठहरा, तभी वो राइचियस ठहरा। मेरे भाई और बहनों, मैं फिर कह रहा हूं कि अब से हम ये सिर्फ जानते हैं कि सिर्फ एक खुदावंद है, और वो जो जो के लिखा गया है, वो कलाम जो खुदा के कलाम में लिखा गया है, हम सिर्फ उस पर भरोसा रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अगर मकाशवा 10 में ये लिखा है कि इस बात को मत लिख के साथ गर्जन ने क्या में क्या हुआ, तो मुझे उसकी उसको इज्जत देनी है, उस कलाम को इज्जत देनी है, और मैं उसे खुदावंद के ऊपर छोड़ देता हूं। जब वहां लिखा गया कि उसको मत लिख, तो मेरे लिए वो बात बिल्कुल वजूद में है और मैं उसको खुदावंद पे छोड़ देता हूं, और जैसा लिखा गया है हम उस पर ईमान रखते हैं, उस पर बिलीव करते हैं। अब देखिए, जल्दी से देखें पहला पत्रस और उसका पहला बाब। पहला पत्रस पहला बाब, वहां 2 आयतें हम पढ़ेंगे। पहली आयत से पढ़ेंगे, पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित यानी रसूल है, उन परदेशियों के नाम जो पंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, चुने गए हैं। आमीन, हम आमीन कह सकते हैं। भाई और बहनों, जैसे कि पत्रस ने उस वक्त सभी लोगों को यह बताया जो 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 कि तितर बितर होकर के अलग अलग रहते थे और अलग अलग जगह में, अलग अलग सिटीज में रहते थे, और यहां देखिए क्या बताया गया है, जो जो खुदावन के पूर्व ज्ञान यानी फोर नॉलेज के द्वारा, पहले से जान लेने के द्वारा जो चुने हुए लोग थे, हम जानते हैं इसको, बार बार पढ़ें, मैं कह रहा हूं इस पत्री को बार बार पढ़ें जो पत्रस ने लिखी। एक बार एक और आयत पढ़ेंगे और मैं तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे, और तीसरी आयत हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित रखा, जीवित आशा के लिए एक नया जन्म दिया। आमीन आमीन। यहां पर हमने देखा एक विश्वास के बारे में कि आज्ञा मानने के और चुनाव के बारे में और छुटकारे के बारे में और नए जन्म के बारे में, ये सारी बातों का जिक्र इस आयत में किया गया। ये कोई नई शिक्षा नहीं है, पर बात सवाल ये है, क्या हमने इन बातों को अपने जीवन के अंदर अनुभव किया? क्या ये बातें हमारे जिंदगी में हमारे साथ गुजरी? क्या हमने अपने आप को इन चीजों के बारे में सीरियसली सोचा और इस पर ईमान लाए, जिससे के खुदावंद खुश हो जाए और उसकी शांति और उसका अनुग्रह और दया हम पर आ जाए? क्योंकि जो पहले से जान लिया खुदावंद ने हमको और नया जन्म दिया और हमारा छुटकारा किया, ये सारी की सारी बातें जो खुदावंद ने हमारे लिए तय करके रखी, ये और जो खुदावंद की कुव्वत के द्वारा नया जन्म जिनका हुआ और खुदावंद के जी उठने पर जो ईमान रखते हैं। और देखिए भाई और बहनों, ये इतनी महान बात है कि पुनरुत्थान में, जी उठने में, कि वहां पर नई जिंदगी शुरू हो जाती है और हमारा प्रभु कह सकता है कि मैं जैसे मैं जीता हूं पुनरुत्थान के द्वारा, जी उठने के द्वारा, वैसे तुम भी जी उठोगे और तुम भी वैसे ही जीवन पाओगे। जिसने के खुदावन के कलाम के इस बीज को वाकई में पा लिया है और ग्रहण कर लिया है और रिसीव कर लिया है, उनके अंदर कुछ नया जन्म होता है, कुछ नया पैदा होता है, कुछ नया आ जाता है और उसके बाद एक नया जीवन आता है। और जो खुदावंद के अंदर पैदा होता है, वहां लिखा है कि तू मेरा इकलौता पुत्र है, आज मैंने तुझे जन्मा है, आज मैंने, और हम सब जो उसके बेटे और बेटियां खुदावन के नए जन्म से बनते हैं, हम सब के बारे में ये कहा जाए, खुदावन ये कहे, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, आज मैंने तुझे जन्मा है, आज मैंने तुझे ग्रहण किया है, आज मैंने तुझे समझा है, आज मैंने तुझे अपनी योजना में शामिल किया है और मैंने अपना वचन, अपना कलाम का बीज तेरे अंदर बो दिया और तेरे मन में जाकर पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने तुझ पर काम किया और मैंने एक नई नींव, एक नए जीवन की लीव तुम्हारे जीवन में डाली। एक और आयत पढ़ेंगे हम, चौथी आयत से पढ़ रहे हैं, पहला पत्रस 1:4, अर्थात एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है और जो, पांचवी आयत पढ़ रहे हैं, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए आने वाले समय में प्रकट होने वाली की जाती है। आमीन, आमीन। यहां पर देखिए, आज इस बात पर गौर करने की हमें जरूरत है कि हम पर आखिरी वर्त में ये बातें नाजिल की जाएंगी और समझाई जाएंगी, प्रकट की जाएंगी और ये सारे के सारे संसार में ये जो वचन है, सारा संसार इसको सुन पाएगा। और इस हालात में हम ये देखें, हम कोई इस बात से दुखी ना हो, पीड़ित ना हो, बल्कि इस बात से खुश रहें। अब देखिए, मैं करीब 88 साल का हो रहा हूं और एक जब मैं 79 का होता हूं और उसके बाद होता है ना 90, मैं अब यात्रा नहीं कर सकता, ट्रेवल जैसा कि मैं पहले करता था यात्रा, आज कई साल पहले मैं यात्रा करता था, अब नहीं कर सकता। मैं जैसे मैं पहले प्रचार करता था उस प्रकार से शायद अब प्रचार भी नहीं कर पाता हूं, उस ताकत से, उस सामर्थ्य से, उस कुवत से। और मैं बहुत सारे शहरों में नहीं जा सकता जहां मैं पहले जाता था, उस वक्त में जो मैंने किया, मैं नहीं जानता कितने और शहर, 165 साल में कितने शहर थे, पर इंडिया में 23 बार मैं गया हूं और भी कई ऐसे कंट्रीज थे जहां पर मैं कई बार गया हूं। पर देखिए इस बात को, देखें कि इसके बाद में सोचें कि बड़ी बड़ी जो मीटिंग्स और सभाएं हुआ करती, जो हमारे साथ हुआ करती थी, अब शायद वो हो नहीं पा रही, उस प्रकार की मीटिंग्स अब नहीं हो पा रही। और मैं कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से कि कोई अफ्रीका और एशिया से और यूरोप कहने की जरूरत नहीं है कि वो ये जो कंप्लीशन होगा, ये जो समाप्ति होगी, ये तो सारे संसार में होगी, और ये नहीं कि यूरोप उसके लिए आने की जरूरत है, नहीं, वो तो सारे संसार में हर जगह पर लोकली होगी और खुदावंत का काम हर जगह होगा, एक ही तरीके से होगा। और हर सैटरडे और वेनसडे को और संडे को जो सारे संसार में ये प्रचार जो है, ये अलग अलग भाषाओं में ये प्रचार ऑनलाइन पहुंचता है और ये सारे विश्वासियों तक पहुंच रहा है और सब सुन पा रहे हैं, और इनमें से कोई भी ये लंबी लंबी यात्राएं करने की अब जरूरत नहीं है। अब सब लोग जो हैं और इस बात को एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर के सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हमने पढ़ा क्योंकि जो कुछ भी अंत के समय में होना है, और हम तो अंत के भी अंत, आखिर के भी आखिरी वक्त में आ पहुंचे हैं। हम प्रभु के बड़े आभारी और शुक्रगुजार हैं, हम अपने दिलों से शुक्रगुजार हैं खुदावन के। और ये भाई और जो भाई जिनको जिस ब्रॉडकास्ट को सुनने में कोई दिक्कत आती है, किसी को ये कहने के लिए जबरदस्ती नहीं है कि आप इसे सुने, और अगर जो इसका प्रचार करना चाहते हैं प्लीज उसको प्रचार करें, पर उस भोजन को दें जो खालिस खुदावन का वचन है। जैसे भाई ब्रैनम ने कहा कि जैसे भाई ब्रैनम को भेजा गया कि हमारे पास वो वचन, वो कलाम लेकर आए, उसी तरीके से प्रभु ने मुझे भी भेजा, मुझे भी तैयार किया कि मैं भी उसी सच्चाई को, खालिस कलाम की सच्चाई को दुनिया में प्रचार करूं। और वह सारे भाई बहन इस वक्त जो हैं, और उसके सारे भाई बहन जो हैं, वो आज उस आत्मिक भोजन, आत्मिक खुराक को बांटें, जिससे के उस प्रभु की मेज को तैयारी बख्शें, और उस प्रभु भोज के लिए जिससे के हम इस सब में खुश हों और आनंदित हों, और उस आत्मिक मन्ना और उस खुदावन के खालिस कलाम को हम प्रचार कर सकें, बांट सकें, हम उसे खा सकें। क्योंकि इंसान केवल रोटी से नहीं, बल्कि हर उस बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है, उससे वो जिएगा, केवल रोटी से नहीं। हम फिर शुक्रगुजार हैं खुदावन के, और भाई केलो के बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जो कलाम उन्होंने पढ़ा, और भाई और बहनों उसको दोबारा से पढ़ें, और एक हर एक आयत के ऊपर रुकें, हर एक बात के उस गौर करें, और खुदावन का शुक्र करें और धन्यवाद करें कि हमने कि वहां क्या लिखा है। हम एक बार फिर ये कहें, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा जरूरी वक्त है जो कि इंसान की कायनात के जिंदगियों में आया, ये वो वक्त है, और बुलाहट का वक्त है, तैयारी का वक्त है, और खुदावंद वो सारी चीजें कामिल करेगा, पूरी करेगा, और वो अपने काम को, जो छुटकारे का काम है, वो अपने छोटे झुंड के साथ में खून खरीदे लोगों के साथ जरूर पूरा करेगा। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि अब्राहम ने खुदावंद पर भरोसा किया, जो खुदावंद ने उससे कहा, अब्राहम ने उसको माना, उसको भरोसा किया, जो खुदावंद ने उससे वादा किया। और मैं और आप भी, मेरे भाई और बहनों, इस बात पर भरोसा करें, हम भी उस पर ईमान रखते हैं जो खुदावन ने कहा, जो कि उसने हमारे लिए वाचा दी, जो उसने वादा दिया अपने कलाम में, वचन में, हम भी अब्राहम की तरह उस पर पूरा ईमान रखते हैं, और वो आएगा, वापस आएगा और हमको लेकर जाएगा, और वो जो समय होगा, वो जो वक्त होगा, उस वक्त जो खुदावन में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो जीवते होंगे वो बदल जाएंगे, और एक साथ वो खुदावन के साथ रैप्चर में जाएंगे, और महिमा में चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, और प्रभु के साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। आज ही इसकी शुरुआत करें, आज ही इसको शुरू करें अपने मन से और अपने दिल से, और इस मुकाशवा को रिसीव करें, उसके वचन को रिसीव करें, उसकी योजना को, उसके प्लान ऑफ सेल्वेशन को रिसीव करें, उसके आभारी रहें। भाई ब्रैनम की मिनिस्ट्री और सेवकाई के लिए धन्यवादी रहें कि ये जो सेवकाई अब चल रही है, ये मिनिस्ट्री जो है, ये सेविकाई लगातार निरंतर उसी सेविकाई को आगे लेकर चल रही है। ये कोई नई सेविकाई या शिक्षा नहीं है जिससे सारी जुबानों में सारे लोग इस संदेश को सुन सकते हैं और इसका अनुभव कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं कि जिससे उस महिमामयी प्रभु के आने की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मैं ये आशा करता हूँ, और सारे जो सेवा करने वाले भाई हैं और स्विट्जरलैंड से हों, और एक बार फिर हम फिर एक बार कहते हैं कि खुदावन आप सबको आशीष दे, जिसने के जिन्होंने भी अभिनंदन भेजे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। प्रभु के नाम में, खुदावन के नाम में, खुदावन के पाक नाम में, आमीन आमीन। हम खड़े होते हैं और अब हम प्रार्थना करेंगे। भाई भोग हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस सुनने के लिए, तेरे कलाम को सुनने के लिए हम जानते हैं प्रभु कि क्या लिखा है। हम जानते हैं कि इस ट्रांसमिशन के लिए जो ऑनलाइन भेजा जा रहा है, जो आखिरी बुलाहट, ये जो आखिरी संदेश भेजा जा रहा है, इससे कि आखिरी लोगों को बुलाया जा सका, और तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं हर चीज के लिए। खुदावन के पवित्र नाम में हम ये मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।
Forever. Now the divine. strength will carry you. He will strengthen you daily. See what your heart believes.